hal sering.
En sama maestro está sana. श्रीमद्भागवत कथा एकदम तो होती रहती है, श्रीमद्भागवत कथा होती है, फिर राम कथाएं होती है, इतने महाप्रभु कथा क्यों नहीं होती? इतने महाप्रभु कुछ कम नहीं है, कुछ थोड़े ज्यादा ही है राम से और कृष्ण से. राम की कथा, राम कथा, भागवत कथा, गौर कथा क्यों नहीं? ऐसे कथाएं तो हरे कृष्ण आंदोलन में, हरे कृष्ण मूवमेंट में, चैतन्य महाप्रभु कथाएं होती रहती है. चैतन्य चरितामृत की कक्षाएं होती है, किंतु विशेष आयोजन हो और कथा की श्रृंखला हो और अन्य महाप्रभु की कथा नित्यम भागवत से ही होया. क्या फिर वैसे कुछ दिनों की या चार दिनों की या अगर नित्य नहीं तो कुछ दिनों की, कई दिनों तक कथा हो तो अब कुछ वर्षों से, कुछ सालों से नोएडा में भी दो कथा हो रही है. हम झांसी में थे, वहां भी वैसे दो कथा प्रारंभ करके हम आए और दूसरे एक वक्ता गौर कृष्ण, इनका नाम है गौर कृष्ण, गौर कथा आगे बढ़ा रहे हैं आज से और अन्य स्थानों पर भी. गौर कथा संपन्न हो रही है, गौर कथा महोत्सव की. श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व हम लोग मनाते हैं बड़े धूमधाम से. उतने ही धूमधाम से गौर पूर्णिमा महोत्सव, चैतन्य महाप्रभु का आविर्भाव दिवस, जन्म पूर्णिमा, कृष्ण की कृष्ण अष्टमी, तो चैतन्य महाप्रभु की गौर पूर्णिमा, जन्म पूर्णिमा, जन्माष्टमी, जन्म पूर्णिमा, राम नवमी, कृष्णाष्टमी और जन्म या गौर पूर्णिमा. क्योंकि कृष्ण ही प्रकट हो रहे हैं, चैतन्य महाप्रभु कृष्ण ही है, नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरकृषै नमः. रूप गोस्वामी प्रभुपाद की यह प्रार्थना श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के श्री चरणों में, उनकी उपस्थिति में, चैतन्य महाप्रभु समक्ष थे और रूप गोस्वामी और अनुपम के भ्राता श्री अनुपम दोनों प्रयाग में मिले श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु से, तो उन्होंने ये स्तुति गाई, प्रार्थना की चैतन्य महाप्रभु के चरण कमलों में. तो वे कहे नमो महावदान्याय, लेकिन पूरी तो व्याख्या नहीं करेंगे, लेकिन हमें बीच का पाठ चाहिए। तो वे कहे कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने, मैं नमस्कार करता हूं नमो महावदान्याय, मेरा नमस्कार इसको नमस्कार कृष्णाय, मेरा कृष्ण को नमस्कार। कैसे कृष्ण को मेरा नमस्कार? कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने, कृष्ण चैतन्य नाम के श्री कृष्ण को मेरा नमस्कार। समझ है? मैं नमस्कार कर रहा हूं कृष्ण को, लेकिन कौन? कैसे कृष्ण? ये कृष्ण चैतन्य है, कृष्ण चैतन्य नाम के कृष्ण को मैं नमस्कार कर रहा हूं। और फिर नमो महावदान्याय, दयालु है महादयालु श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु, दया कर मोरे तुम बिना के दयालु जगत संसारे। और कौन हो सकता है? दूसरे आचार्य नरोत्तम दास ठाकुर का है, ओ श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु मुझ पर दया करो, दया कर मोरे तुम बिना के दयालु, आपसे और कौन दयालु? पतित पावन हेतु तब अवतार, पतितों के उद्धार के लिए आपका अवतार हुआ है हे प्रभु। और मोसम पतित प्रभु ना पाई भैया, और मेरे जैसा पतित आपको मिलेगा नहीं। आप पतितों के उद्धार के लिए अवतार लिए हो और मैं अति पतित हूं। तो हे दयालु चैतन्य महाप्रभु दया करो हमारे। गौरकृषे नमः। रूप गोस्वामी का है। वैसे आप कृष्ण, कृष्ण तो श्याम सुंदर, लेकिन आप कैसे हो? गौरकृषा, आपकी आभा आपकी कांति कैसी है? गौर वर्ण की है, गौरत्व है। पुस्तक श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु मैंने कहा भी कि वो रामकृष्ण से कम नहीं कुछ अधिक ही है। तो अधिक क्या है? श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु कृष्ण तो है ही, फिर और अधिक क्या है? अधिक है राधा रानी। राधा भाव द्युति सुबलितं नौमी कृष्ण स्वरूपं। तो ये एडिशनल फीचर श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु का, राधा भाव, राधा भाव और राधा द्युति, राधा का भाव, राधा की कांति, मतलब ही राधा है। राधा का भाव और राधा की कांति रंग को अपना के श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए। इसीलिए अंत कृष्ण बहिर गौरा, अंदर तो वे कृष्ण है और बाहर वे गौरांग महा गौर राधा रानी के कारण छिपे है कृष्ण राधा के पीछे, या राधा में श्री कृष्ण चैतन्य राधा कृष्ण नहीं अन्य ये परिचय चैतन्य चरितामृत हमें देता है। ऐसे है श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु राधा कृष्ण नहीं अन्य राधा और कृष्ण। तो राधा गौर वर्ण की है कि नहीं तप्त कांचन शिखा ये राधे आप कैसी हो तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी तप्त कांचन कांचन सोना इन कैसा सोना तप्त तपा हुआ मोल्टन गोल्ड जो साधारण सोने से और भी उसमें चमक धमक होती है जो पिघलता है सोना तप्त कांचन गौरांगी। इसीलिए यहां श्री कृष्ण श्याम वर्ण के नहीं दिखते वे गौर वर्ण समझी राधा को साथ ले आए। इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले जमुना का तट हो बंसी वट हो ये सब कुछ हो फिर आप भी आ जाना और राधा को साथ ले आना। तो जब वे श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट हुए हैं तो वे राधा को साथ ले आए वे अकेले नहीं आए। तो राधा और कृष्ण ये जुगो जोड़ी ये सरकार किशोर किशोरी एक साथ टू इन वन मैं कहते रहा टू इन वन राधा और कृष्ण एक एक तनु है अभी गाय रहते राधा कृष्ण एक तनु है निधुवन माधे बंसी बाजा है। राधा दयालु है और भी दयालु है इसलिए क्या श्री कृष्ण और राधा मिल के जो व्यक्तित्व बन रहा है द पर्सनैलिटी ऑफ गॉड है चैतन्य महाप्रभु वे अधिक दयालु क्यों राधा भी साथ है राधा की कृपा है राधा की दया का प्रदर्शन काशन है इस लीला में इस अवतार में गौर अवतार कई राधार भावे वे गौर अवतार हरे कृष्ण महामंत्र करिला प्रचार। राधा ये राधार भावे इवे गौरवता गौरांग महाप्रभु ने ये अवतार लिया राधा के भाव के साथ और फिर आगे क्या किया हरे कृष्ण नाम गौर करिला प्रचार और हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे इस महामंत्र का प्रचार वासुदेव घोष बोले करी जोड़हात जय गौर सही कृष्ण सही जगन्नाथ। हुई चैतन्य महा कौन है चैतन्य महाप्रभु तो चैतन्य महाप्रभु के परिकर पार्षद अच्छे गायक कवि वासुदेव घोष कहते हैं कैसे कहते हैं करी जोड़ हाथ मेरा हाथ जोड़ के नम्र निवेदन है मेरा साक्षात्कार सुनिए क्या है साक्षात्कार जय गौर वही जो गौरांग महाप्रभु है वही तो श्री कृष्ण है और वही तो जगन्नाथ है जगन्नाथ श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु ने कोई भेद नहीं है सारों भट्टाचार्य को चैतन्य महाप्रभु ने विशेष दर्शन दिया उस दर्शन का नाम है षडभुज दर्शन। एक रूप में छह भुजा है और दो भुजा उन्हें मुरली धारण किए हुए और श्यामल महादिश घन श्याम वर्ण थे, दूसरे दो हाथों में धनुष और बाण धारण किए, दूसरे दो हाथों में एक में कमंडलू दूसरे में दंड धारण वही है। तो ये श्री कृष्ण श्री राम श्री चैतन्य महाप्रभु संस्कृत में लिखा ही है। एक बोले पूर्वे रावण वधिला कहा है, त्रेता युग में रावण का वध किए भगवान श्री राम, गोलो के वैभव लीला करिला प्रचार। ये गोलो वृंदावन की वैभव लीला उन्होंने गोकुल वृंदावन या मथुरा वृंदावन में प्रकाशित की द्वापर युग में, और फिर कलयुग में राधा रघावे एवे गौरावतार। कलयुग में वे राधा के भाव अपनाए और हरे कृष्ण नाम गौ करिला प्रचार। कृष्ण चैतन्य महाप्रभु लीलाए बड़ी मधुर है, वैसे भी मधुराधि बदेर अखिल मधुरा, लेकिन मधुर कृष्ण से भी अधिक मधुर गौरांग महाप्रभु, इसलिए कहा है गौरंगेर मधुर लीला जार करने प्रवेशिला हृदय निर्मल भेलो गौरंगेर मधुर लीला। गौरांग महाप्रभु लीला मधुर लीला माधुर्य जार करने प्रवेशिला, जिनके कानों में कर्णों में उस लीला का प्रवेश होगा और कर्णों से हृदय प्रांगण तक वो कथा लीला पहुंचेगी, तो हृदय निर्मल भेलो हृदय निर्मल अंतर्राष्ट्रीय श्री कृष्ण भावना रस के साथ जुड़े हुए भक्त सदैव गौरांग महाप्रभु की लीलाओं का भी श्रवण करते हैं, इसलिए देखा जाता है कि उनका हृदय निर्मल थोड़ा अधिक तेजी से अधिक रफ्तार से महाप्रभु के कारण। कृष्ण प्रेम प्रदायक है, प्रेम का वितरण करते हैं श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु। तो 5,000 वर्ष पूर्व व्यापार के अंत में भगवान श्री कृष्ण वृंदावन में प्रकट हुए और फिर 500 वर्ष और अभी इस साल वैसे 527 वर्ष पूर्व की बात है, वही श्री कृष्ण 527 वर्ष पूर्व श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में नवद्वीप मायापुर में प्रकट हो गए। नवदीप धाम के तो अगर वृंदावन अनंत वृंदावन कृष्ण और श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु में अगर कोई अंतर नहीं है तो फिर वृंदावन और नवद्वीप में कोई अंतर हो सकता है? बड़ा आसान प्रश्न भी आसान है, कोई आंख बंद करके कह सक भाई ना एक कोई अंतर नहीं हो सकता। कृष्ण में और कृष्ण चैतन्य में कोई अंतर नहीं है तो वृंदावन और नवद्वीप में भी कोई अंतर नहीं होना चाहिए, और नहीं है नहीं है नहीं है। ये धाम कुछ लुप्त धाम या गुप्त धाम या मायापुर को नवदीप गुप्त वृंदावन, गुप्त वृंदावन छिपा हुआ वृंदावन। अब प्रकाशित हो रहा है वो धाम, बहुत कम लोग जानते थे, फिर अधिक अधिक लोग अब जानने लगे उस नवद्वीप धाम को, और जो जानने ही नहीं लगे जाकर जानकर वहां जाने लगे उस धाम में। भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद ने जो अंतर्राष्ट्रीय श्री कृष्ण भावनामृत संघ का जो वर्ल्ड हेडक्वार्टर वो मायापुर में स्थापना की 72 में, और गौर पूर्णिमा का पहला उत्सव संपन्न हुआ 1972 में, जिस उत्सव में सम्मिलित होने के लिए 60-70 डिवोटीज आए थे भारत और भारत के बाहर से, और अभी 40-41 वर्ष के उपरांत केवल परिक्रमा में नवद्वीप मंडल परिक्रमा में 7,000 डिवोटीज परिक्रमा कर रहे हैं। 70 थे 72 में और 7,000 और सभी परिक्रमा में गए भी नहीं थे, और ये तो प्रारंभ ही है। भविष्य में 70,000 भी परिक्रमा करेंगे, इतने महाप्रभु ने कहा मेरे नाम का प्रचार होगा पृथ्वी दे नगर आदि ग्राम सर्वत्र प्रचार हो मोर नाम, तो मेरे नाम का प्रचार होगा कहां पर? दिल्ली में, गाजियाबाद, फरीदाबाद, नोएडा, ग्रेटर नोएडा में, ये तो नगर हो गए। अब पृथ्वी पर जितने नगर है जितने ही ग्राम है सर्वत्र प्रचार हुई हुई मोरना, ये चैतन्य महाप्रभु की भविष्यवाणी, चैतन्य महाप्रभु साक्षात श्री कृष्ण की भविष्यवाणी अब सच हो रही है। लोगों को हरि नाम प्राप्त हो रहा है अपने अपने नगरों में ग्रामों में, और जैसे ही हरि नाम उनको प्राप्त हो रहा है उनको धाम का पता चल रहा है। किस धाम का पता चलता है? चैतन्य महाप्रभु का प्राकट्य धाम नवद्वीप धाम का पता, तो नाम से फिर धाम तक, नाम प्राप्त होता है फिर नाम से धाम तक, या नाम पहुंचाता है धाम तक। तो हर नगर में हर ग्राम में हर नदी का नाम प्राप्त होगा लोगों को और फिर वे भगवान के धाम लौटेंगे। नवद्वीप आना, नवद्वीप धाम आना, भगवान के धाम लौटने जैसी बात है। भगवान वहां रहते हैं, सदा के लिए वहां रहते हैं नवद्वीप में। तो मैं अभी अभी वही था नवद्वीप मायापुर में ही, और 72 में पहला फेस्टिवल हुआ, 73 में फिर दूसरा फेस्टिवल हुआ होगा, और 73 के द्वितीय कुछ समय में गया, और तब से हर साल जा ही रहा हूँ। मेरे फेस्टिवल अटेंड करने की 40th एनिवर्सरी हुई। तो उस धाम की, इस धाम में हम 40 बार गए रहे, 40 से अधिक की, 40 तो गौर पूर्णिमा फेस्टिवल, गौर पूर्णिमा तक नहीं रुके, क्या कथा होने जा रही थी, इसी हम भागे दौड़े थोड़े जन पहुंचे यहाँ। लेकिन वहां नवद्वीप मंडल परिक्रमा में मैं जरूर रहा, इस वक्त इस साल की परिक्रमा में भी। तो वहां नवद्वीप चलते, नवद्वीप है वहां। वृंदावन में आप जानते हो कि वहां 12 बन है, किसी घाट, बंसी वट, बादश कानन, बादश कानन, ये 12 बन। जहां सब लीला कैला श्री नंद नंदन, तो नंद नंदन ने जहां लीला की, वे 12 बन है वृंदावन में। और श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु जहां लीला खेले, वहां नवद्वीप है, या वन वृंदावन में वाद्वीप नवद्वीप है। नवद्वीप मंडल परिक्रमा मैं था, तो एक दिन हम लोग गए थे जानुद्वीप गए, जानुद्वीप क्या जानुमुनि का आश्रम था। ये उस समय की बात है जब भगीरथ राजा भगीरथ गंगा को स्वर्ग से पृथ्वी पर लाए, उस समय जानुमुनि जानुद्वीप में, उस द्वीप का नाम, तो एक द्वीप का नाम हुआ जानुद्वीप। पहले द्वीप का नाम है सीमंत द्वीप, और दूसरा द्वीप का नाम है गोद्रुम द्वीप, तीसरे द्वीप का नाम है मध्य द्वीप, चौथे द्वीप का नाम है कोलर द्वीप, पांचवे द्वीप का नाम है ऋतु द्वीप, छठवे द्वीप का नाम है जानु द्वीप, सातवे द्वीप का नाम है गोद्रुम द्वीप, आठवे द्वीप का नाम है रुद्र द्वीप, और नवे द्वीप का नाम है अंतर द्वीप। और इन नौ द्वीपों में वैसे नौ विधा भक्ति भी होती है, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दर्शनम सख्यम निवेदनम, ये नौ विधा। तो प्रथम द्वीप में श्रवण भक्ति, गोद्रुम द्वीप में कीर्तन भक्ति, मध्य द्वीप में स्मरण भक्ति, रागल द्वीप में अग्नि, इस प्रकार नव द्वीपों में नव विधा भक्ति, एक द्वीप में एक भक्ति का प्रकार। तो जानुमुनि का आश्रम जहां, उस द्वीप का नाम जानु द्वीप, व वंदना वंदनम नाम की भक्ति। तो जानुमुनि अपनी संध्या वंदना कर रहे थे, तो इतने में भगीरथ मुनि गंगा को ले आए, उनको ले जाना था गंगा को, गंगोत्री से गंगा सागर तक। तो रथ में बैठे थे और गंगा पीछे अपने वाहन पर बैठ के पीछे से आ रही, पीछे पीछे आ रही। तो यूपी बिहार की यात्रा करते हुए उनका रथ और रथ के पहिए से क्या बोला था डिगिंग, जेसीबी के और वहां नदी का पात्र बन रहा था। साइमल्टेनियस रथ भी चल रहा है और खुदाई भी हो रही है और गंगा पूरी फुल भर के पीछे से आ रही है। तो जानो मैं के आश्रम से जब गुजर रही थी तो संध्या वंदना का समय था, तो अपना आचमन पात्र पुष्प इत्यादि सारी सामग्री को तो तैयार करके तो रखे थे, लेकिन इतने में इतने जोर के साथ से नदी बह के आगे बढ़ी और सारा विघ्न उत्पन्न हुआ उनके संध्या वंदना में। सारे पुष्प कहा है, ये कहा है, आचमन कहा है, तो उनको क्रोध आया, इस नदी के कारण, नदी की तरफ उन्होंने क्या किया, सारे गंगा का पान किया, उन्होंने एक बूंद भी बाहर नहीं। तो भगीरथ सारी कथा तो गौ कथा से संबंध तो है, लेकिन हमें कुछ और कहने का कहना है। तो हुआ तो भगीरथ मुनि अपने पीछे देखे तो गंगा ही नहीं है। कई सारे प्रयास उन्होंने पहले भी किए थे, ऐसे प्रयास और किसी ने शायद नहीं किए होंगे, न भूतो न भविष्यति, ऐसे प्रयास राजा भगीरथ के रहे गंगा को पृथ्वी पर लाने के लिए। और अब थोड़ी दूर जाना था गंगा सागर तक, या सागर के पुत्रों का उद्धार गंगा के जल के स्पर्श से। तो गंगा ही अदृश्य हुई तो लौटे, पता चला कि जानू मुनि ने ही छुपाया होगा। तो उनका विशेष प्रार्थना किए, क्षमा याचना किए, तो फिर पुनः गंगा को जन्म दिए, जन्म उद्गम स्थान बने, जानू मुनि स्वयं गंगा के उद्गम स्थान, इसलिए गंगा का दूसरा नाम हो गया। भगीरथ के प्रयासों से गंगा को पृथ्वी पर लाया, इसलिए गंगा का एक नाम भागीरथी, और जाह्नू मुनि से के शरीर से पुनः वो प्रकट हुई वो जाह्नू द्वीप में, नवद्वीप के एक द्वीप में, जाह्नू द्वीप में उनके शरीर से पुनः प्रकट हुई, इसीलिए गंगा का दूसरा नाम हुआ जाह्नवी। जाह्नवी तट बने जग मन लोभा, जिस गंगा के तट पर गौरांग महाप्रभु की आरती होती है, इब जयो जय गौरा चांदी, आरती की शोभा तो देखो, पहले गंगा को वहां लाए और वह आरती होने लगी, पहले भी होती थी अभी होने लगी। आरती कौन करे, आरती करे न ब्रह्मा आदि देव गाने, ब्रह्मा आरती कर रहे और सारे अन्य देवता भी वहां उपस्थित है। इव शिव शुक नारद प्रेमे गद 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 प्रेमे गद गद, तो वह शिव जी है, वह सुखदेव गोस्वामी है उस आरती में, नारद जी भी पहुंच गए और यांती गाते हुए उनका गला गदगद हो गया। तो अब गंगा और पुनः भागीरथ राजा भागीरथ आगे गंगा सागर की ओर ले जाना चाहते थे, लेकिन इतने में गंगा को पता चला, किस बात का पता चला, गौर पूर्णिमा महोत्सव का पता चला। कुछ अनाउंसमेंट सुनी होगी उस समय, बैनर पोस्टर पढ़ा होगा। तो गंगा को जब पता चला कि उत्सव गौर पूर्णिमा महोत्सव होने जा रहा है, तो गंगा ने कहा, भगीरथ महाराज, मेरे प्रभु की गौर पूर्णिमा तिथि महोत्सव अब कुछ ही दिनों में होगा, या तो मैं यही रहूं। इसे अटेंड करना, गौर पूर्णिमा फेस्टिवल आई मस्ट अटेंड। फिर बेचारे राजा भगीरथ भी रह गए, दोनों भी रह गए उस समय, और दोनों ने उत्सव मनाया, और औरों ने भी मनाया, और दोनों भी दोनों ने उत्सव मनाया, खूब कीर्तन किया, गौरांगा 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 गौरांगा, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, खूब कीर्तन किया, नृत्य हुआ, खूब उपवास हुआ। गंगा मैया ने निर्जला उपवास किया, समझे? गंगा ने क्या किया? निर्जला उपवास। गंगा के लिए कठिन हो गए, और जलमय है, जलमय ही है, निर्जल उपवास। तो कहने का तात्पर्य यह है कि गौर पूर्णिमा कोई नया उत्सव नहीं है, न तो गौरांग महाप्रभु कुछ नए भगवान है, शास्त्रों से ये जानकारी प्राप्त होती है। ब्रह्मा के एक दिन में एक बार श्री कृष्ण प्रकट होते हैं, ब्रह्मा के एक दिन में, ब्रह्मा का एक दिन, अब उसका हिसाब नहीं करेंगे, उसमें 5 मिनट तो बीत जाएंगे, इतना लंबा उनका दिन होता है। ब्रह्मा के एक दिन में एक बार कृष्ण आते द्वापर युग में, तो कृष्ण द्वापर युग में प्रकट होते, तो उसके बाद वाला जो युग है कलयुग, उस युग में श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु प्रकट होता है। तो ब्रह्मा, इतना तो कह ही देते हैं, ब्रह्मा की उम्र कुछ 50 साल चल रही है, इज अबाउट 50 years old। तो एक साल में कितने दिन होते हैं? 365 दिन मल्टीप्लाइड बाय 50, उतने दिन मतलब उतने बार श्री कृष्ण प्रकट हुए हैं वृंदावन में, और उतने ही बार श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए हैं नवद्वीप में। ये कोई नया धाम या नए भगवान नहीं है। फिर हम अर्द्वीपों की यात्रा की, सीमांत द्वीप, सीमांत द्वीप में होता है, सीमांत द्वीप जहां पार्वती पर विशेष कृपा की श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु ने अपने धाम कैलाश में शिव जी को कीर्तन और नृत्य करते हुए उनको कीर्तन और नृत्य करते हुए पार्वती ने देखा गौरांग 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 ऐसा कीर्तन भाव विभोर होके शिव जी कर रहे थे कीर्तन नृत्य भी कर रहे थे। शिव जी भी अपने नृत्य के लिए प्रसिद्ध है नटराज। श्री कृष्ण का नृत्य, चैतन्य महाप्रभु का नृत्य, शिव जी का भी नृत्य प्रसिद्ध है गौर नटराज। शिव जी नटराज अपने नृत्य के साथ कीर्तन कर रहे थे तो पार्वती ने पूछा कि ये कौन है गौरांगा, आप इतने पागल हो गए कि गौरांगा गौरांगा नाम लेते हुए कभी आप जमीन पर लौटते हो, कभी हंसते हो, कभी पसीने पसीने होते भाव विभोर होके, कभी शरीर आपका रोमांचित होता है, अब जब गौरांग गौरांग कहते हो कौन है गौरांग, हो ये गौरांग। तो शिव जी कहे चलो चलते हैं। तो तीर्थ यात्रा के लिए निकले तो शिव जी पार्वती को नवद्वीप लेके आए। और वहां दोनों ने भी और श्री पार्वती ने विशेष तपस्या की वहां, और उसने खुद ने भी गौरांग नामों का खूब उच्चारण किया। तो हुआ क्या, गौरांग गौरधाम गौरधाम में ही तपस्या और उनका गुणगान चल रहा था गौरांग महाप्रभु का। तो गौरांग प्रकट हो गए, पार्वती ने प्रणाम किया पंचांग प्रणाम साष्टांग में पंचांग प्रणाम, और गौरांग महाप्रभु के चरणों की धूल पार्वती ने अपने मस्तक पर लगाई। जैसे स्त्रिया लगाती है क्या मांग सिंदूर लगाती है, तो गौरांग महाप्रभु के चरणों की धूल अपने मस्तक पर यहां उठाई। तो फिर तो जहां तपस्या की थी उस द्वीप का नाम सीमंत द्वीप हुआ। सीमंत मतलब ये जो पार्ट होता है स्त्रिया जहां कुमकुम लगाती सिंदूर लगाती है, तो उस द्वीप का नाम हुआ सीमंत द्वीप या सीमंतिनी, मतलब पार्वती का निवास और यह गौरांग महाप्रभु की विशेष कृपा प्राप्त की। अब यह इस्कान का राजापुर जगन्नाथ मंदिर है, आप गए होंगे तो वो द्वीप है सीमंत द्वीप। और वैसे लास्ट ईयर वहा पार्वती और गौरांग महाप्रभु के विग्रह की स्थापना हुई। तो ये प्राचीन काल से ये धाम नवद्वीप धाम वहां पर है, जो भगवान के गोलोक का ही एक्सटेंशन है। गोलोकम च परित्यज्य शासन गोलोकम च परित्यज्य लोकानां त्राण कारणा, भगवान श्री कृष्ण गोलोक का त्याग करके 5000 वर्ष पूर्व तो वृंदावन आए, लेकिन 527 वर्ष पूर्व वे नवद्वीप आए। ये धाम तो वहां था ही, और उस धाम में वैसे हम लोग आना आने जाने की बात करते, भगवान आए अवतरती, भगवान उतरते हैं, लेकिन उस धाम में वैसे भगवान का नित्य निवास चलता रहता है और भगवान की वहां नित्य लीला भी होती रहती है। अद्या भी गौर लीला होती है और कोई कोई भाग्यवान देखी बारे पाए, श्लोक की है बंगला भाषा में, कोई बुद्धिमान भाग्यवान लोग आज भी श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु की लीला का दर्शन कर सकते हैं आज भी। जैसे भगवान श्री कृष्ण की अष्टकालीय लीला वृंदावन में है, तो मायापुर नवद्वीप में श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु की अष्टकालीय लीला। इस अष्टकालीय लीला में वैसे मुख्य लीला तो वृंदावन में भगवान की रास पीड़ा, तो सर्वोपरि अति मधुर लीला मानते हैं। तो नवद्वीप मायापुर में अति मधुर लीला है श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु की संकीर्तन लीला। प्रातः काल में श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु उदीन वरुण पूरब भागे विजमानी गौर अमनि जागे, उदीन वरुण पूरब भागे विजमानी गौर अमनि जागे, भक्त समूह लैया साथे गेलो नागर राजे। तो भगवान क्या करते हैं, अपने भक्तों को इकट्ठे करते हैं सूर्योदय के समय और उनका कीर्तन प्रारंभ होता है। थथाई थथाई बागे लखो ढोल बजता है, मृदंग बजता है, घन घन तारे झांझे रे रो और अंजीरा बजती है। मुकुंद माधव यादव हरी भले न बोलो रे बदन भरी। अधिकतर भक्त कीर्तन कर रहे हैं, लेकिन कुछ भक्त प्रचार भी कर रहे हैं, उनको जो थोड़े माया में है या अभी अभी जगह है कीर्तन नहीं कर रहे, उनको भक्त कर रहे हैं। मुकुंद माधव यादव हरी भले न बलपूर्वक थोड़ा ताकत लगाओ, कहो भगवान का नाम कहो, और ऐसे कीर्तन में स्वयं भगवान गौर भगवान या गौर कृष्ण श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु क्या करते हैं, नृत्य करते ध्यान से। प्रेमे ढल ढल सोनार अंग चरणे नूपुर बाजे, चैतन्य महाप्रभु प्रेमे ढल ढल डोल रहे, प्रेमे ढल ढल सोनार अंग। अंग कैसा है देख रहे आप, कैसा है अंग, सुवर्ण वर्ण का है। प्रेमे ढल ढल सोनार अंग और चरणे, चरण में क्या है नूपुर, उनकी रुंझुन 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 जनका आवाज ध्वनि निकल रही है। श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु फिर एक दिन हम लोग मध्य द्वीप गए, मध्य द्वीप जो तृतीय द्वीप है, या स्मरण बाकी भक्ति स्मरण भक्ति है उस द्वीप की, या सप्त ऋषि वहां आके ब्रह्मा के आदेश अनुसार सप्त ऋषि आप जानते आकाश में का सप्त ऋषि का सात तारे रात्रि के समय आप देखे हो, तो वहां से उतरे विश्वामित्र वशिष्ठ इत्यादि और उन्होंने भी तपस्या की तो रंग महाप्रभु के नामों का खूब उच्चारण किया और उनको भी दर्शन हुआ ठीक 12 बजे 12 o'clock एट नून। तो इसीलिए उस द्वीप का नाम हुआ मध्य द्वीप, मध्यान्ह के समय दर्शन दिए सप्त ऋषियों को उस द्वीप में। इस द्वीप में नैमिषारण्य है, नवद्वीप में नैमिषारण्य है, मध्य द्वीप में नैमिषारण्य है। नैमिषारण्य में क्या होता है, क्या होता है, श्रीमद् भागवत कथा होती है। यूपी में जो नैमिषारण्य सीतापुर जिले के पास आप आगे बढ़ो तो नैमिषारण्य में जाओ तो शुद्ध गोस्वामी वहां भागवत कथा करते हैं। लेकिन मायापुर नवद्वीप में जो नैमिषारण्य है वहां शुद्ध गोस्वामी ही गौर कथा करते हैं। एक समय हमने वहां कथा बाकी कथा सुनी, नैमिषारण्य की कथा कही वो घटना। जब कथा की अनाउंसमेंट हुई नैमिषारण्य में गौर कथा होने जा रही है, तो शिव जी जब सुने गौरांग महाप्रभु की कथा नैमिषारण्य नवद्वीप में हो रही है, तो शिव जी झट से तैयार हुए और अपने नंदी बैल के पीठ पर बैठ के जा रहे थे नैमिषारण्य की ओर। लेकिन बैल की स्पीड थोड़ी ऐसी होती है, थोड़ी स्लो स्पीड, वैसे हमारे पदयात्रा के बैलों से तो नंदी बैल थोड़ा तेजी से जाता होगा, हम लोग पदयात्री है तो हम लोग 4 kilometers पर आवर पदयात्रा की स्पीड, बैलों की स्पीड, ये बैल थोड़ा अधिक स्पीड से जाता होगा। लेकिन ध्यान आना है कैलाश से आना है नवद्वीप, तो शिव जी ने थोड़ा कैलकुलेशन किया था और उन्होंने सोचा कि इस स्पीड से मैं जाऊंगा तो कथा का समापन जब होगा तभी मुझे पहुंचना है। लेकिन गौरांग महाप्रभु की कथा को मैं बिल्कुल प्रारंभ से सुनना चाहता हूं, उस कथा अमृत का एक बूंद भी उससे मैं वंचित नहीं होना चाहता हूं, तो क्या किया जाए। तो प्रवास करते करते ट्रैवलिंग करते करते ब्रह्मलोक तक वे पहुंचे थे, ब्रह्मलोक के बगल में था, तो उनको आ गई बड़ा आइडिया। क्या आइडिया, मैं सोचा कि क्यों ना ब्रह्मा का जो वाहन है हंस वाहन उसकी तो जेट एज जेट की तरह तेजी से जाता है, तो उन्होंने अपना नंदी को कहीं पार किया होगा या बांध दिया पार किया और हंस के पीठ पर बैठ के पहुंच गए मध्यद्वीप में आ गए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, नहीं कथा किसकी है, ओम नमो भगवते गौराय या गौरचंद्राय या सचिनंदनाय ऐसा कुछ होना चाहिए। और वो प्रारंभ होने के पहले ही शिव जी वहां आके पधार गए। तो हंस वाहन मध्य द्वीप में जब आप जाते हो तो हंस वाहन मंदिर का जरूर दर्शन करना। हम कुछ दिन पहले बात है दर्शन हंस वाहन, तो हंस वाहन हंस वाहन को वहां खड़े किए और शिव जी बगल में जो नंदी शारण्य है वह गौर कथा श्रवण के लिए गए। ये शिव जी बड़े ही औरंग महाप्रभु के अनन्य भक्त है शिव जी शंकर। अपने पत्नी से वैसे कहते कि वैसे मैं तो ऑफिशियली वो कैलाश मेरा धाम है लेकिन मैं तो आजकल मेरा समय तो नवद्वीप में ही बीता है, नवद्वीप में ही रहते हैं और कम से कम नौ में से पांच द्वीपों में तो शिव जी का बहुत घनिष्ठ संबंध और कई सारे प्रसंग उनको सुनने को मिलते हैं। जैसे गोद्रुम द्वीप है, गोद्रुम द्वीप में पंचानन तला है। पंचानन, पंचानन कौन है? पंच मतलब पांच, आनंद मतलब क्या मुख, पांच मुख वाले कौन है? शिव जी है, हनुमान जी का भी होगा शिव जी पंचानन। झांसी में था इस्कॉन मंदिर के बगल में ही पंचमुखी महादेव का मंदिर है। तो इस गोद्रुम द्वीप में जहां कीर्तन भक्ति का प्रचार है तो इस गोद्रुम द्वीप में शिव जी कीर्तन करते हैं, पंचानन कीर्तन करते हैं। ब्रह्म बोले चतुर्मुखे कृष्ण कृष्ण हरे हरे महादेव पंचमुखे राम राम हरे हरे। खूब कीर्तन करते हैं उस गोद्रुम द्वीप में शिव जी। बड़े नृत्य के साथ कीर्तन करते हैं और वैसे शिव जी का अनुयायी और फिर वाराणसी में भी वो वेदांत का अध्ययन करना चाहते शिव जी के अनुयायी आपका कुछ मुक्ति चाहते हैं। वेदांत वाक्येश सदा रमन्ता गोपीन बनता खलु भाग्यवंता। तो समझते हैं ओ हम कितने भाग्यवान हैं, वो वेदांत का अध्ययन करने वाले वाराणसी के कुछ विद्वान, हम कितने भाग्यवान, बस हमारी जरूरत क्या है गोपीन, बस हम गोपीन पहनते हैं और क्या करते हैं सदैव सदा रमनता, किसमें रमान रहते हैं वेदांत वाक्येषु सदा रमनता। तो वेदांत अध्ययन करके वो ओम ब्रह्मा मुक्ति कामी, मुक्ति की कामना उनकी रहती है। लेकिन यह गोद्रुम द्वीप में जहां शिव जी कीर्तन करते हैं और नृत्य करते हैं और उनके अनुयायी भी शिव जी के साथ जब नृत्य और कीर्तन करते हैं तो वहां नृत्य करते हैं मतलब वो लात मारते हैं। किसको लात मारते हैं? मुक्ति को लात मारे, ये राव मुक्ति हमें नहीं चाहिए, हमें कौन चाहिए, हमें भक्ति चाहिए जो प्राप्त है। और जब भक्ति प्राप्त है तो मुक्ति तो भक्ति की कौन है, दासी है। भक्ति देवी को भगवान ने एक तो ज्ञान और वैराग्य दिए, ज्ञान और वैराग्य तुम्हारे पुत्र होंगे भगवान का है। आपकी देवी को, और मुक्ति तुम्हारी होगी दासी। तो शिव जी यहां जब गोदरुद्वीप में कीर्तन करते हो और नृत्य करते, मानो लात मार के मुक्ति को वहां से भगा है, चलो होगा तुम्हें यहां स्थान नहीं। और वैसे वही शंकराचार्य, शंकर जब बने शंकराचार्य, ये 11-12 सौ वर्ष पूर्व की बात है, और शास्त्रार्थ करते 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 वे भी भारत की यात्रा भ्रमण नवद्वीप पहुंचे। तो रुद्रद्वीप नाम के द्वीप में, नवद्वीप में एक शंकरपुर है, शंकरपुर जहां शंकर आए, शंकराचार्य आए, तो उनको भी श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु ने दर्शन दिया और भी कहा, महाशय शंकराचार्य जी बाद में मिलेंगे, अब यहां से आगे बढ़िए, मेरे धाम में ये भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी ऐसी कामना का प्रचार यहां नहीं होगा। कृष्ण भक्त निष्कामत ही वशान, यहां तो मेरे भक्ति का प्रेममयी भक्ति का यहां प्रचार होगा, आपके प्रचार आपकी कोई आवश्यकता नहीं, आप आगे बढ़े। तो शंकराचार्य आगे बढ़े वह प्रचार नहीं। अध्यद्वीप में हम पुष्कर तीर्थ गए, नैमिषारण्य से हम आगे बढ़े मध्यद्वीप में, तो थोड़ी दूरी पर हम कहां पहुंच गए, पुष्कर तीर्थ पहुंचे, पुष्कर उसे पुष्कर तीर्थ तो आप जानते हो राजस्थान में, वही एक स्थान है जहां ब्रह्मा की पूजा होती है, उनको श्राप मिला, अन्य कहीं पर नहीं, बस यही एक स्थान पूजा होगा। हम लोग पुष्कर स्थान गए, तो वहां का इतिहास मैंने पढ़ा सुना और सुनाया भी। वह एक देवदास नाम के ब्राह्मण आए थे, वैसे कई स्थानों की कई तीर्थ यात्रा करते 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 वे नवद्वीप आ गए और वही रह गए। हमने अपनी पर्णमुटी बनाई और वहां रहने लगे, साधना करते हुए, और भी वृद्ध भी हुए, लेकिन वे वैसे पुष्कर तीर्थ नहीं गए थे, तो थोड़ा शोक करने लगे, ओ मैंने तो कितने सारे तीर्थों की यात्रा तो की, लेकिन ये पुष्कर तीर्थ का मुझे दर्शन नहीं मिला, मेरी यात्रा नहीं हुई। ऐसा जब सोच ही रहे थे तो पुष्कर तीर्थ मूर्तिमान पुष्कर तीर्थ उनके समक्ष खड़ा हुआ और देवदास को देवदास ब्राह्मण को उस तीर्थ ने कहा, मैं तो यही हूं, ले लो दर्शन। तो उस देवदास ब्राह्मण ने सोचा, है मेरे कारण इस तीर्थ को इतनी दूर की लंबी सफर यात्रा करनी पड़ी, राजस्थान हो वेस्ट इंडिया, राइट, वेस्ट इंडिया, वेस्ट से ईस्ट आना पड़ा यहां तक। अरविंद देव की ऐसे जब वे कह रहे थे कि आओ मेरे कारण आपको यहां इतना दूर आना पड़ा, ते पुष्कर तीर्थ, तो पुष्कर तीर्थ ने कहा, नहीं नहीं नहीं, मैं कहीं से आया गया नहीं, नहीं मैं यही रहता हूं, मेरा निवास यही है। वो जो पुष्कर तीर्थ, दैट इज
एक्सटेंशन
माय एक्सटेंशन वो मेरा विस्तार ओरिजिनल पुष्कर तो तुम ओरिजिनल पुष्कर में हो अभी फिर और आगे बढ़े हम लोग तो कुरुक्षेत्र पहुंच गए और आगे बढ़े हम मध्य द्वीप में तो पंचवेणी पहुंचे हम त्रिवेणी को आपको पता त्रिवेणी का पता आपको त्रिवेणी प्रयाग अभी भी कुंभ मेला हुआ लेकिन मायापुर में पंचवेणी वैसे मायापुर तो संसार की सारी पवित्र नदियां वहां बहती है और नदियों के बहने के कारण ही तो ये अलग अलग वी बन चुके हैं नदियां जिस ढंग से बहती है एक दूसरे को क्रॉस करती है आगे बढ़ती है और फिर कहीं पर संगम हो रहा है कहीं अलग हो रही है पुनः इसके कारण वहां वी बन चुके हैं कई सारी पवित्र नदियां गंगा भी है गंगा तो है ही आपने अभी भी कथा सुनी और यमुना भी है यह जो गंगा है वो आधी गंगा बहती है एक तट पर गंगा है दूसरी जी बची हुई गंगा यमुना है गंगा और यमुना साथ में एक पहा बहती है चैतन्य महाप्रभु को जब जाना था संन्यास लिया तो वृंदावन जाना था तो वे सोच रहे थे कि मैं गंगा के तट पर जा रहा हूं इतने में नित्यानंद प्रभु आए साथ में जा रहे हैं और कहां जाना चाहते हो मैं वृंदावन जाना चाहता हूं वृंदावन जाना चाहते हो तो नित्यानंद प्रभु कहे अब तो वृंदावन पहुंच गए चैतन्य महाप्रभु ने सोचा अगर मैं वृंदावन पहुंच गया तो फिर ये नदी कौन सी होनी चाहिए यमुना होनी चाहिए यमुना मैया की कह के उसमें कूद पड़े कोई कह सकता कि नित्यानंद प्रभु ने से झूठ कई बार नहीं यमुना ही है चैतन्य महाप्रभु जहां है वो वृंदावन भी है आप वृंदावन में हो कहना वृंदावन में रहता नवद्वीप भी एक दृष्टि से वृंदावन ही है फिर हम ऋतु द्वीप है ऋतु द्वीप ऋतु समझ ऋतु सीजन इस द्वीप में सारे ऋतु मतलब कितने ऋतु छह ऋतु एक ही साथ बाहर कहते हैं एक ही साथ एक ही दिन और ग्रीष्म ऋतु है फिर वर्षा ऋतु उसी समय में शरद ऋतु है शिरीष ऋतु है तो चैतन्य महाप्रभु के लास्ट टाइम प्रकट के पहले इन इन ऋतुओं की एक सभा हो रही थी और सभा में चर्चा का विषय ये बना कि कौन से ऋतु में सोच रहे थे वैसे साल में दो दो महीने का एक काल होता है एक ऋतु होता तो उसमें से कौन से ऋतु में भगवान प्रकट होंगे दिस वॉज एजेंडा टॉपिक डिस्कशन टॉपिक तो हर ऋतु सोच रहा था ए, मेरी जब बारी होगी और वर्षा ऋतु में प्रकट होंगे और बता रहा था क्यों कैसे वर्षा ऋतु का महिमा महात्म्य इसीलिए नहीं नहीं शरद ऋतु में प्रकट होंगे शरद ऋतु ने कहा और ऋतु ने कहा तो फाइनली बसंत ऋतु ने माइक्रोफोन लिया और कहा कि नहीं जानते हो क्या भगवान कहे, क्या कहे? ऋतु नाम कुसुमा का रहा। गीता के 10वें अध्याय में भगवान ने ऋतु की चर्चा की या कहा कि सब ऋतु में, ऋतुओं में कुसुमा का रहा, जिस ऋतु में कुसुम ही कुसुम, पुष्प ही पुष्प खिलते हैं, स्प्रिंग सीजन, वो स्प्रिंग सीजन आए। तो जब स्प्रिंग सीजन होगा तभी तो भगवान प्रकट होंगे, और फिर हुआ भी वैसे ही। ये सीजन कौन सा सीजन है? इस स्प्रिंग सीजन। ऐसे चैत्र के साथ, चैत्र वैशाख मतलब स्प्रिंग सीजन, लेकिन हम लोग 2 सप्ताह एक पक्ष पीछे रहते हैं कैलेंडर में, थोड़ा भेद, बंगाल का कैलेंडर, ईस्ट इंडिया एंड रेस्ट ऑफ इंडिया, और आप जानते हो ना ये बात, 2 पक्ष थोड़ा पीछे रहते हैं। तब अब गौर पूर्णिमा भगवान प्रकट हुए, तो कौन से सीजन में प्रकट हुए? बसंत ऋतु में भगवान का प्राकट्य हुआ। उस ऋतु द्वीप में इज मोस्ट ब्यूटिफुल, सभी द्वीप ऐसे सुंदर है, सौंदर्य की खान है, लेकिन जो ऋतु द्वीप है यहाँ का सारा हरियाली और रंग बिरंगा सब दृश्य विशेष है। इस ऋतु द्वीप में ही है राधा कुंड की, राधा कुंड हम लोग जा रहे थे ऋतु द्वीप में से, हमने राधा कुंड, नॉट डिफरेंट वृंदावन का राधा कुंड और भी राधा कुंड। हम लोग जानो द्वीप गए थे, तो जानो द्वीप है वृंदावन का भद्रपान, फिर आगे बढ़े मोदद्रुम द्वीप गए तो ये है भांडीर पान, फिर आगे बढ़े तो बेल पुकूर आता है रुद्रद्वीप में, तो उसकी तुलना बेल बन के साथ। तो इस प्रकार वहां के नवद्वीप और ये वृंदावन के 12 बन ओवरलैपिंग या ये बन क्या प्रकट होता है इस द्वीप में। मध्यान्ह के समय श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु उसे वृंदावन में राधा कुंड के तट पर मिलेंगे भगवान आपको। तो नवद्वीप में ये जो राधा कुंड है वहां कीर्तन करते हुए हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम हरे, कीर्तन करते हुए कितने महाप्रभु वहां के राधा कुंड के तट पर पहुंच जाते हैं। अगर वहां गए तो नहीं, लेकिन एक अंबिका कालना नाम का स्थान है बंगाल के नवद्वीप क्षेत्र के भक्तों के लिए पता होगा, ये नवद्वीप मंडल में नहीं लेकिन गौर मंडल, ये नवद्वीप मंडल फिर और भी बड़ा क्षेत्र जो है उसको गौर मंडल है, गौर मंडल में ये अंबिका पालना आता है, कालना ही कहते हैं अंबिका कालना, अंबिका का हुआ प्रसिद्ध मंदिर है। तो इतने महाप्रभु वक्त गौरीदास पंडित वह आ रहा करते थे गंगा के तट पर स्थान। चैतन्य महाप्रभु वहां एक समय मिलने के गौरीदास पंडित शांतिपुर से एक तट पर, शांतिपुर है गंगा के एक तट पर, ईस्टर्न बैंक, फिर नौका से पार करो तो फिर अंबिका कालना आता है। चैतन्य महाप्रभु नौका से पार किए और गौरीदास पंडित के पास पहुंचे तो जो नाभिक नाभिक है नाभिक नाभिक के पास जो इसने वो चलाता है ओके वो लेके गए चैतन्य महाप्रभु और कहे कि रविदास पंडित ये इसको ले लो, इससे मैं क्या करूं। तो चैतन्य महाप्रभु कहे तुम क्या करो, इस संसार के जो लोग हैं उनका बेड़ा पार करो और इनको नौका में बैठा के इसे चलाओ नौका मदद से नदी पार करो। चैतन्य महाप्रभु के अपने हाथों से लिखा हुआ गीता, पूरी गीता चैतन्य महाप्रभु ने अपने हाथों से लिखी, हस्तलिखित चैतन्य महाप्रभु हैंड राइटिंग, ऐसी एक ऐसे ग्रंथ भी चैतन्य महाप्रभु गौरीदास पंडित को दिए। तो उस मंदिर में आज भी जो नौका का जो होता है बुक और गीता हैंड रिटन गीता वहा प्रदर्शनी वहा दर्शन आज भी होता है। तो वहां जब रहे श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु सब नित्यानंद प्रभु भी थे तो गौरीदास पंडित ने खूब सेवा की तो नित्यानंद की। और जब दोनों को आगे बढ़ना था लेकिन गौरीदास पंडित ऐसे नहीं चाहते थे कि कविता कहीं जाए, वे चाहते थे वही रहे, लेकिन ये तो संभव नहीं था, प्रभु को आगे जाना ही था। तो इतने में गौरीदास की मूर्ति लेके कोई आए, गौरीदास तो घर में थे रहते थे, गौरांग महाप्रभु नित्यानंद प्रभु रहते थे और गौरीदास की विग्रह भी कोई लेके आए। और अब गौरीदास पंडित गौरीदास गौरांग महाप्रभु नित्यानंद प्रभु की सेवा और गौरीता शशि गौरीता विग्रह की सेवा भी कर रहे हैं। भोग लगता तो ये दो प्रभु को और दो विग्रह प्रभु को भी भोग लगता। तो चैतन्य महाप्रभु कहे अब तुम जिनको घर में रखना चाहते हो उनको रखो। तो गौरीदास पंडित कहेगी आप गौरीता आप रहो, ठीक है हम रहते हैं। तो फिर हुआ कि जो गौरीता मूर्तियां थी वो चलने लगी और ये गौरीता बन गए विग्रह। कभी जो मूर्तियां जो थी वो गौगीताएं बने, गौरांग महापुरुषों को चलने लगे राधा गोविंद देव के, तो गौरीदास पंडित बाहर दौड़े गए ना, आप प्रभु आप प्रभु। तो वे रुके, वे बन गए विग्रह, और पहले जो विग्रह बने थे वे चलने लगे। अब किसको रखे किसको जाने, महाप्रभु ने ये समझाया इस लीला से कि मुझमें और विग्रह में कोई अंतर नहीं है, ये विग्रह भी मेरा ही अवतार है। तो एक गौरविता का सेफ रहा विग्रह के रूप में, दूसरे गौरविता आगे बढ़े अन्य लीला के लिए। और फिर इतना ही नहीं, ये गौरीदास पंडित उनको कहीं बाहर जाना था, तो अपने शिष्य जिनका नाम हृदयानंद दास था, उसको कहे कि मैं जाता हूं अब स्टेशन पर, भगवान की खूब सेवा करो, ठीक से सेवा करो। कहके चले गए। अभी गौर पूर्णिमा का भगवान का आविर्भाव तिथि का उत्सव आने वाला था, तो गुरु जी गए तो लौटे नहीं। गौर पूर्णिमा अब एक दो दिनों में उत्सव, उसकी सारी तैयारी भी हृदयानंद प्रभु ने करके रखी थी। तो फिर आ गए, फाइनली आ ही गए गौर गौरीदास पंडित महाराज गुरु महाराज। तो उन्होंने जो पता लगा कि लगाया कि गौर पूर्णिमा की सारी तैयारी हृदयानंद ने करके रखी है, इस बात से वे ऐसे प्रसन्न तो थे, लेकिन थोड़ा उन्होंने रोष क्रोध दिखाया, आगे रुक नहीं सकते थे, मैं तो आने ही वाला था। यू आर इंडिपेंडेंट, तुम स्वतंत्र हो, कोई सलाह नहीं करते हो, मेरी प्रतीक्षा नहीं करते हो, खुद ही सब कर रहे हो, ये क्या नहीं चलेगा, तो तुम अपना उत्सव तुम अलग से उत्सव करो, हम अपना अलग से उत्सव यहां मंदिर में करेंगे, तुम गंगा के तट पर तुम अलग से उत्सव करो। तो हृदयानंद ने सारी सामग्री सारी व्यवस्था ट्रांसफर की, उत्सव मनाने की तैयारी गंगा के तट पर की। तो उत्सव का दिन आया, तो गौरीदास पंडित ने अपने दूसरे शिष्य को कहा कि तुम संभालो सारी यहाँ के विग्रह की व्यवस्था सेवा उत्साह, और जाओ भोग लगाओ। तो शिष्य जब गया तो पर्दा खोल दिया, लेकिन वहां भगवान ही नहीं गया। तो हुआ क्या, कहा गए भगवान, पता लगवाते हैं। तो दूर से देखा तो हृदयानंद जो उत्सव मना रहे थे गंगा के तट पर, वहां गौर पिता नाच रहे हैं, डांसिंग। बढ़िया से उत्सव हो रहा, वहां के ही सारे लोग जुटे हुए थे, और विग्रह तो गौरविताय वहां खिल रहे डूल रहे नाच रहे दर्शन दे रहे कीर्तन हो रहा है नृत्य हो रहा है। तो फिर गौरीदास पंडित एक हाथ में छड़ी लेके गए, तब गौरविताय को थोड़ा चाटेंगे पड़ता रहे, कहा गए तुम। तो गौरविताय ने जब देखा गौरीदास पंडित छड़ी लेके आ रहे हैं। तो दो बातें हुई, एक तो अदृश्य रूप में वे मंदिर में लौटे, वहां भी खड़े हो गए, और दूसरे रूप में वे हृदयनंद के हृदय में प्रवेश कर छिप गए। वो अभी अभी तो थे, तो अभी अभी हृदयनंद के हृदय प्रांगण में जाके बैठे विराजमान। इसका अनुभव जब गौरीदास पंडित किए तो फिर अपने शिष्य का नाम का परिवर्तन किए हुए और वे कह के आज से तुम्हारा नाम हृदय चैतन्य होगा। जिसके हृदय में चैतन्य महाप्रभु गौरताय रहते हैं ऐसे तुम हृदय चैतन्य होंगे। हृदय चैतन्य प्रभु के गौरीदास पंडित के। अब ऐसे ये गौरीदास पंडित कृष्ण लीला में ये सुवन सखा होते हैं, कृष्ण के जो कई सखा बाल पाल पालक उसमें से एक बारह द्वादश वाल पाल उनका एक समूह है। तो वे सारे के सारे प्रकट हुए थे चैतन्य महाप्रभु के लीला में, तो उसमें से सुवन सखा बने थे ये गौरीदास। अभी गौरीदास पंडित जी सुवन सखा बने। तो केवल कृष्ण ही प्रकट नहीं हुए, बलराम ही प्रकट हुए। नंद नंदन गई सची सुत होइल सई, बलराम होइल निताय। तो जो नंद नंदन थे वृंदावन में वे बन गए सची नंदन, नंद नंदन बन गए सची नंदन, मतलब गौरांग महाप्रभु चैतन्य महाप्रभु। बलराम हो ही लगेता, अब बलराम हो गए नित्यानंद प्रभु। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिव सदि गौर भक्त वृंद। इतनी सारी अद्भुत बातें हैं। ये पंचतत्व पंचतत्व तो चैतन्य महाप्रभु तो राधा कृष्ण है, श्री कृष्ण चैतन्य फिर प्रभु नित्यानंद प्रभु बलराम है, श्री अद्वैत महाविष्णु है, गदाधर पुनः राधा रानी का उनमें आवेश है, और श्रीवास है नारद मुनि। विद्वांस भी प्रकट हो गए, और कौन बन गए चांद काजी में, चांद काजी नाम का एक कैरेक्टर रहा। चैतन्य महाप्रभु का संकीर्तन प्रारंभ हुआ, ये चांद का जी उसको रोकने का प्रयास चांद का जी का है, तो संकीर्तन दोनों का वो शत्रु बना। लेकिन इस चांद का जी जो कंस इतने महापुरुष ने उनका उद्धार किया। आदेशानुसार कीर्तन को रोक दो, उनके सारे सिपाही सोल्जर्स सारे नवदीप भर में AK-47 डंडे क्या, तो वहां पर कीर्तन कर रहे तो ये आके और पीठ से कीर्तन मृदंग तोड़ देते, खोल डांगा भांगा एक स्थान है श्रीवास का घर भी जहां है, जब खोल को मृदंग को तोड़ दी चांदका जी के, तो ऐसे कीर्तन का विरोध का चैतन्य महाप्रभु को पता चला, तो चैतन्य महाप्रभु ने सारे नवदीप के भक्तों को इकट्ठा और नॉन कॉपरेशन मूवमेंट असहकार असहयोग आंदोलन छेड़े स्वयं श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु और ऐसा विशाल भक्तों का समूह और सबके आगे श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु कीर्तन करते हुए और सायंकाल का समय और ड्यूटी लैंप्स मचार लेके चल रहे हैं, लाखों की वेद नंबर जा रहे थे चांदका जी के कोठी की ओर। कीर्तन कहा जाएगा चलो चांदका जी कोठी चलो, चलो दिल्ली क्या चलता है चांद चलो चांदका जी कीर्तन करते हैं, तो चांदका जी को पता चला तो अभी मर गए अभी अभी बच नहीं पाऊंगा मैं लोग तो बेचारा बाहर आया मिलने के लिए कुछ समझौता कुछ फ्रेंडशिप बातें करने लगा, अच्छा सम्मान है इतने महाप्रभु और चांदका जी तो उसने कहा कि आप नहीं बचे कल कल रात्रि को ही मैंने संकल्प लिया हूं। क्या संकल्प? मैंने राज्य में संकीर्तन का विरोध नहीं होगा, मेरे राज्य में कीर्तन होता है। तो क्या हुआ कल रात को? तो चांदका जी ने अपना अनुभव सुना, मैंने थोड़ा बटन वगैरह खोले और देखा, ये देख लीजिए कल रात को मैं जब सोया था तो एक ऐसा अद्भुत व्यक्ति आया, आधा तो मनुष्य था लेकिन उसका शेर तो शेर ही था और उसने ऐसी गर्जना की मैं जग गया और आगे बढ़े हुए और कहा उन्होंने कीर्तन को रोकोगे तुम, और रोकना चाहते हो तो तुम्हें तुम्हारी जान बनता है तुम्हारी चक्री बनाता है। वैसे मेरी जान बच गई जब मैंने कहा कि नहीं नहीं कीर्तन को मैं कभी नहीं रोकूंगा, और वैसे ही हुआ चांदका जी ने उस समय से कीर्तन को नहीं रोका और वो खुद ही गौरांग महाप्रभु का अच्छा भक्त बना और यहाँ समाधि है, चांद काली की समाधि बनी हुई है। हम लोग परिक्रमा में जब जाते हैं तो चांद काली की समाधि में जाते हैं, चांद काली की समाधि के दर्शन के लिए जाते हैं, वहां की धूली अपने मस्तक पर उठाते हैं। चांद काली भी बन गया भगवान का। एक समय गदाधर उनके पड़ोस में चांद काली का निवास था। गदाधर गए और कहे प्रभु तो सभी का उद्धार कर रहे हैं, बस कोई बचा है तो तुम ही हो, तुम्हारा भी उद्धार हो जाए, तुम भी लो भगवान का नाम, तुम भी गौरांग महाप्रभु का नाम लो। तो चांदा जी ने कहा गौरांग महाप्रभु का नाम मैं कल से लू। ये बात जब गदाधर पंडित ने सुनी तो भय उल्लास के साथ हर्ष कर और नाचने लगे, कल की बात क्या तुमने आज ही तो कहा गौर, थैंक यू आपने आज गौरांग महाप्रभु का नाम लिया, तुम्हारा उद्धार हो गया। वो चांद चांद का जी तो कृष्ण लीला के कंस मामा थे, उनका उद्धार किया। और जय विजय आपने कहा जय विजय, तो जय विजय उनको तीन बार जन्म लेना था और फिर पुनः वापस लौटना सेवा। लेकिन ये जय विजय को पता चला बन गए हिरण्यकश्यप रावण और कुंभकर्ण और दंत भक्त और शिशुपाल, ये दोनों जय विजय उनको जब पता चला कि अब गौरांग महाप्रभु भगवान इतना दयालु अवतार लेके प्रकट होंगे तो जय विजय उनके पास दो फरियादे हैं, तो वैकुंठ चलो लौटो अपनी ड्यूटी निभाओ या थोड़ी प्रतीक्षा करो भगवान यहाँ आ रहे हैं कि मधुर लीला होगी। तो उन्होंने वैसे यही रहना पसंद किया और चैतन्य महाप्रभु के आविर्भाव तक के रुके और जगदानंद और माधवानंद बने। इनका शॉर्ट फॉर्म नाम का हुआ जगाए और माधाए। तो इस लीला में भी उन्होंने एक बदमाश किया विनाशाय च दुष्टता में दुष्ट चरित्र अपनाया प्रारंभ में, उनका भी उद्धार चैतन्य महाप्रभु ने दान किए। दीन ही नयत छिलो हरि नामे उद्धारि लो, तार साक्षी जगाय मधाय। महाप्रभु नाम नाम देते किसी को नाम उद्धार करता, दीन ही न जत जत छिलो हरिनाम उद्धारी लो। फिर क्या व्हाट इज द प्रूफ कि हरिनाम उद्धार करता है, तार साक्षी देखो देखो जगाए मधाए। तो हम लोग जो पदयात्रा कर रहे थे, पदयात्रा परिक्रमा नहीं पदयात्रा, ऑल इंडिया पदयात्रा, हम लोग काटवा गए, काटवा नाम का एक स्थान है जगह जहां जगाए मधाए की समाधि है। तो उस समय हमने सोचा भी नहीं था कि क्या जगाए मधाए की समाधि कैसे हो सकती है, उनका जो चरित्र है तो वही थोड़ा सामने आ जाता है। ऐसे व्यक्ति की समाधि तो, लेकिन वहां तुमने जब सुना कि जगह जगह की समाधि, हम लोग सच की झूठ का पता लगवाने गए तो सचमुच वहां जगह मना की समाधि, और इतना ही नहीं उनके प्रसन्नता के लिए वहां अखंड कीर्तन हो रहा है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम। उसके बिना जीना, हरिनाम के बिना जीना तो क्या जीना, हरिनाम के बिना। ये जगह मदाय उनके समाधि और कीर्तन हो रहा है, हरिनाम संकीर्तन। तो सारा आध्यात्मिक जगत ही वैसे प्रकट हुआ चैतन्य महाप्रभु के समय। ये हमारे रूप गोस्वामी, वंदे रूप सनातन रघु जगौ श्री जीव गोपाल को, ये सब गोपिया है, मंजरिया है। रूप गोस्वामी रूप मंजरी, वृंदावन लीला की मंजरिया गोपिया, भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के पार्षद बन के उनकी लीला में प्रवेश किए। और फिर वो गाते हैं, राधा कृष्ण प्राण मोर जुगल किशोर, जीवने मरा दे गति आर नही मो, राधा कृष्ण प्राण मो जुगल किशोर। हमारे नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं, जो एक मंजरी उनके अपने जो भाव है, उनके शरीर तो पुरुष जैसे शरीर तो उनको मिले हैं, लेकिन अंतर उनका जो रूप है वो मंजरी का रूप भाव उसी शरीर में है। और श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु लीला में प्रवेश करते हैं। वृंदावन का गोकुल जहां श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए, वो योगपीठ कहते हैं। और योगपीठ प्रचार का योगपीठ, नवदीप का योगपीठ, मायापुर का योगपीठ का जन्म स्थान वो, और गोकुल एक जैसा। और फिर सची माता और जगन्नाथ मिश्र और दूसरे तीसरे नहीं है, ये जगन्नाथ ये यशोदा और नंद बाबा ही प्रकट होते हैं, सची माता और जगन्नाथ मिश्र। और कृष्ण प्रकट हुए तो आ गए सारे देवता, यम ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुतस् सुनवंती दिव्य सवई। मथुरा में बहुत भीड़ हो गई, इनकी भीड़ देवताओं की भीड़ अपने अपने यानों में वाहनों में बैठ के देवता आए, खचाखच हो भर गया मथुरा मंडल, पार्किंग के लिए जगह नहीं, ट्रैफिक जाम। तो वो हालत नवदीप में ही हो, जब चैतन्य महाप्रभु प्रकट हो रहे हैं तो पुनः वे देवता पहुंच गए और वही स्तुति हो रही है, स्वागत हो रहा है, सुस्वागतम प्रणाम सुस्वागतम इमाय। एक नीम का पेड़ आज भी है वहां, नीम के पेड़ के अपने घर में महल जैसा नहीं है, वहां सची माता और जगन्नाथ मिश्र का निवास, तो वहीं पर श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए। नीम के पेड़ के नीचे जन्म हुआ, इसीलिए उनका नाम हुआ, उनका नाम रखा गया निमाय। तो नीलांबर चक्रवर्ती जो सची माता के पिता श्री चैतन्य महाप्रभु के ग्रैंड मैटरनल ग्रैंड फादर, उन्होंने कुंडली वगैरह देखी उस क्षेत्र के व्याख्या थे, तो उन्होंने नाम रखा, इस बालक का नाम होगा विश्वंभर। बड़ा उचित नाम है विश्वंभर। विश्वंभरो द्विजभरो युगधर्म पालो वंदे जगत प्रिय करो अरुणावतार विश्व। कई सारे गौरांग सहस्र नाम है। गौरांग क्या है? गौरांग सहस्र नाम है, जैसे विष्णु सहस्र नाम और कई सारे सहस्र नाम है, गौरांग सहस्र नाम। और हे भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु ने हम सबको दिया अपना नाम। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। चैतन्य महाप्रभु भगवान की दी हुई अपने ही जीवों को हम चैतन्य महाप्रभु के जीव है, अंश है, सेवक है, भक्त है, तो हम सभी को तो हमने थोड़ा प्राण डालने के लिए प्राणंती, ताकि प्राण आ जाए, गेट आवर लाइफ बैक। महाप्रभु ने क्या किया? संसार को महामंत्र दिया, महामंत्र। तो महामंत्र भगवान है, ऐसी ऐसी बातें सुने तो महामंत्र भगवान है, सुन तो लिया लेकिन ऐसे कोई कवित्व नहीं हो रहा है, महामंत्र भगवान है, ये सत्य है, महामंत्र भगवान है। नाम चिंतामणि चैतन्य रस विग्रह शुद्ध मुक्त नित्य और क्या अभिन्नत्वा नाम नामिनो, नाम और नामी अभिन्न एक। ओ, ओ, ये हरि नाम दिया भगवान चैतन्य। इस श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु की गाथा कथा के कई शास्त्र है, कई ग्रंथ है, चैतन्य चरितामृत नामक ग्रंथ प्रभुपाद प्रकाशित किए, कृष्णदास कविराज गोस्वामी चैतन्य चरितामृत को देखे, राधा कुंज श्याम कुंज तट पर चैतन्य भागवत नाम का ग्रंथ है, वृंदावन दास ठाकुर चैतन्य भागवत लिख गए, स्वयं व्यास ही थे, व्यास पुनः प्रकट हो गए, व्यास प्रकट हुए थे, उन्होंने श्रीमद् भागवत लिखा, अन्य पुराण लिखे, तो चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए तो व्यास पुनः प्रकट होके वृंदावन दास के रूप में उन्होंने चैतन्य भागवत की रचना। मुरारी गुप्त नाम के भक्त थे, चैतन्य महाप्रभु के पड़ोसी थे, उन्होंने एक ग्रंथ लिखा चैतन्य चरित नाम का ग्रंथ उन्होंने लिखा। एक लोचन दास ठाकुर नाम के और एक भक्त हुए, उन्होंने चैतन्य मंगल नाम का ग्रंथ लिखा, गौर कथा इसमें है, और भक्ति रत्नाकर नामक ग्रंथ भी प्रसिद्ध है। इस प्रकार कई सारे ग्रंथ हैं, जिसमें से पांच ये मुख्य ग्रंथ है। अलग-अलग देव की कथा का कहते हैं कि ये गौ कथा तो अनंत है और अनंत शेष ही अपने सहस्र मुखों से ये गौ कथा गा सकते हैं। हम क्षुद्र जीव, उनकी सीमा है, हम कहा और कितना गा सकते हैं, कह सकते हैं। अपनी शुद्धि के लिए हम लोग उसका है गौ कथा करने का, या गौ कथा प्रारंभ होगी आज और भी हम और सब मिल रहा है। महाप्रभु की मधुर मधुर लीला, मधुर चिंतन, हर बात मधुर है, मधुरा